सेवा संघ की प्रणाली में बुराई रहित होना साधन बताया गया। साधन क्या है? बुराई रहित होना। उपासना क्या है? परमात्मा से आत्मीय संबंध स्वीकार करना। भजन क्या है? आत्मीयता के फल स्वरूप परमात्मा के प्रति प्रियता का उदित होना। प्रिय की मधुर स्मृति का जागृत होना भजन है। बुराई रहित होना साधना है। प्रभु से आत्मीय संबंध स्वीकार करना उपासना है। उनकी मधुर स्मृति का जागृत होना भजन है। और प्रेम के आदान प्रदान में प्रेमी के अस्तित्व का खो जाना भगवत मिलन है। संघ की पद्धति। अब आप साकार उपासक बनेंगे कि निराकार बनेंगे, कि दो भुजा वाले की आराधना करेंगे, कि चार भुजा वाले की, कि अष्ट भुजा वाले की, कि सहस्र भुजा वाले की, कि शंख चक्र पद्म में सुधारी। सो कोई भेदभाव मानव सेवा संघ नहीं मांगता। परमात्म तत्व है और वह श्रद्धा विश्वास का विषय है। और बाकी जितनी बातें उसके संबंध में अलग अलग रूप, अलग अलग नाम, अलग अलग गुण इत्यादि, यह तो व्यक्तिगत भिन्नता का विषय है। इसलिए मानव सेवा संघ अपनी ओर से किसी विशेष रूप, किसी विशेष नाम का न आग्रह करता है न विरोध करता है। मूल बात क्या है? बुराई रहित हो जाओ तो साधक बन गए। अब हिंदू है कि मुसलमान है, ईसाई है कि बुद्ध है कि जैन है, कि सिख पारसी कौन है, दुनिया का कौन मतावलंबी है, इससे मानव सेवा संघ को कोई संबंध नहीं है। तुम किसी मत को मानो, तुम किसी देश में रहो, तुम्हारा कोई विधि विधान हो, तुम्हारी कोई वेशभूषा हो, तुम्हारी कोई भाषा हो, सभी मानव सेवा संघ की दृष्टि में मानव हैं, साधक हैं। और इस एक मंत्र को मान करके सबका विकास हो सकता है कि भाई जीवन में अगर कोई साधना करनी है तो केवल इतनी की बुराई रहित हो जाओ। बुराई को रख करके किसी विधि विधान से मनुष्य को शांति मिल जाती हो, मुक्ति मिल जाती हो, भक्ति मिल जाती हो, तो ये बिल्कुल कोरी झूठी बात है, मन बहलाव है, भ्रम है, प्रमाद है और कुछ नहीं है। ये मानव सेवा संघ की शोध है। तो साधना हो गई, बुराई रहित हो जाओ। कैसे हो जाओ उसके संबंध में भी सुन लीजिए, बड़ी बढ़िया बात है, बड़ी आशाजनक बात है। आप सभी मानव सेवा संघ के प्रेमी हैं और बहुत से भाई यहाँ ऐसे बैठे हैं जो विभिन्न शाखाओं में मानव सेवा संघ की के तत्वावधान में विचार गोष्ठी करते हैं, शाखा सभा चलाते हैं, सत्संग का कार्यक्रम चलाते हैं, जिन्होंने अपना कल्याण और सुंदर समाज के निर्माण में भाग लेना पसंद किया है। ऐसे भी बहुत से भाई बहन बैठे हैं, उनको इन बातों को खूब अच्छी तरह से जान लेना चाहिए। बुराई रहित हो जाना सबसे पहली बात हो गई। बुराई रहित कैसे हो जाए? तो हमारा जो ये एक रोना गाना रहता है और अपनी दुर्बलता को प्रकाशित करके उसका भी एक आभास हम लोग रखते हैं अपने में कि हम तो बड़े बहादुर हैं, अपनी अपनी दुर्बलता, अपनी गलती सबके सामने कह देते हैं, तो इतने से काम नहीं बनेगा। ये कह देना कि मैं क्या बताऊं, क्रोध मुझको पसंद तो नहीं है, क्रोध रहित जीवन में चाहता तो हूँ, लेकिन हमारे से क्रोध छोड़ा ही नहीं जाता, मिटता ही नहीं है, न चाहने पर भी आ जाता है, तो ऐसा कह देने से माफी नहीं हो जाएगी। साथ के रहने वाले तो माफ कर देंगे, अरे भाई जाने दो, लाचार है, क्या करे, उससे रुकता नहीं है तो कर देता है, सह लो, तो साथ वाले तो सह लेंगे। लेकिन आप सोच करके देखिए कि क्रोध के आवेश में हृदय का जो रस सूख जाता है, क्षोभ के कारण से जीवनी शक्ति का जो ह्रास हो जाता है, प्रकृति के विधान से ये परिणाम आपको स्वीकार करना ही पड़ेगा, उसको कौन माफ करेगा, उससे कैसे बचिएगा। जीवन में मांग है रस की, और कैसा भी सब सर्किल है, देखिए रस की कमी से व्यक्ति क्रोधित क्षुभित होता है, और क्रोधित क्षुभित होने से जीवन का रस सूखता है। परित्राण कहाँ है भाई, कैसे बनेगा। तो आप मानव सुलभ दुर्बलता को प्रश्रय मत दीजिए। क्या हमारे युग के शरीर विज्ञान मनोविज्ञान के जानने वाले, अपने को विद्वान समझने वाले लोग खुद भी भ्रम में रहते हैं और दूसरों को भी भ्रम में डालते हैं। क्या कहते हैं, ये तो मनुष्य का स्वभाव है, ये कैसे मिटेगा, काम क्रोध लोभ मोह। तो मैंने भी बहुत साहित्यिक भाषाओं में खूब लिखा है, मानव सुलभ दुर्बलता लोभ मोह काम क्रोध को मानव सुलभ कह देने का अपराध मैंने भी खूब किया है, और बड़ा गौरव लिया है कि मैं बहुत अच्छा साहित्य रचना करती हूँ। लेकिन ये भूल है। मानव सेवा संघ ने क्या कहा कि तुम्हारा स्वरूप अविनाशी है और परम प्रेम तुम्हारे जीवन की मांग है, तुम अपने को लोभी मोही कामी क्रोधी स्वीकार ही क्यों करते हो। तुम स्वीकार करोगे तो ये विकार तुम्हारे सिर पर चढ़े रहेंगे, तुम अस्वीकार करोगे तो तुम्हारी हस्ती से अलग हो जाने पर इनका कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। बड़ी भारी बात है, भूल को भूल जानते हुए भी अपनी जिंदगी की सत्ता दे करके उनको सत्तावान बनाए रखना, और फिर उन्हीं से आक्रांत होकर खुद दुखी होना और दूसरों को दुखी करना, ये साधक का काम नहीं है, ये साधक का लक्षण नहीं है। स्वामी जी महाराज ने कहा, बड़ी बढ़िया बढ़िया बातें हैं, मैं क्या बताऊं। एक दिन मैं जयपुर में सत्संग की सभा में बोल रही थी, तो महाराज की एक एक बात बोलती जाऊं, नई नई बात सूझती जाए, तो एकदम हमको याद आ गया, मैथिली शरण गुप्त जी ने लिखा है ना भगवान राम के चरित्र के बारे में, राम तुम्हारा वृत्त स्वयं ही काव्य है, कोई कभी बन जाए सहज संभाव्य है। तो मुझे लगा कि स्वामी जी महाराज की बातों को लेकर के कोई सहज से ही वक्ता बन सकता है, इतनी बातें हैं कि जिसका कोई अंत नहीं। तो महाराज ने बुराई रहित होने के संबंध में क्या कहा कि देखो भलाई की स्वतंत्र सत्ता होती है, ठीक है ना, सत्य की स्वतंत्र सत्ता है, उदारता स्वाधीनता परम प्रेम इनकी स्वतंत्र सत्ता है, पर पीड़ा से पीड़ित होना, ये जो उदात्त गुण हैं मनुष्य के जीवन के, मानवता के जो लक्षण हैं, इनकी तो स्वतंत्र सत्ता है, इनका कभी नाश नहीं होता। लेकिन उदारता के विपरीत अनुदारता, दयालुता के विपरीत कठोरता, त्याग संयम सेवा के विपरीत व्यसन विलास, ये सब जो हैं ये आदमी की भूल से उत्पन्न होते हैं। तो जिसकी उत्पत्ति हुई है उसका नाश हो जाना बहुत स्वाभाविक बात है। ये सोचना कि लोभ मोह काम क्रोध आदि प्रकृति के दोष हैं, इनका नाश नहीं होगा, ये भूल है। सच्चाई और भलाई और अच्छाई जो है वो अविनाशी परमात्मा में से प्रकट हुआ है, इसलिए ये गुण अविनाशी हैं। और अपने विवेक के अनादर से जो भूल हम करते हैं वे भूल नाशवान है। तो मानव सेवा संघ ने कहा कि तुमने भूल स्वीकार किया है, इसलिए तुम्हारे में विकार है, तुम अपनी की हुई भूल को पुनः न दोहराने का व्रत ले लो तो सभी भूल निर्मूल हो जाएंगे। ये कह दिया मानव सेवा संघ ने। तो बुराई रहित होने वाला साधन हम सब लोग कर सकते हैं कि नहीं, कर सकते हैं। कोई कहे कि गोवर्धन की परिक्रमा बड़ा बढ़िया साधन है, तो जिसके पैर से चलाना जाता है वो कैसे करे, नहीं कर सकता है। कोई कहे कि निर्जला एकादशी बहुत अच्छा व्रत है, तो जिसका स्वास्थ्य ठीक ना हो, जिसके पेट में एसिडिटी बनती हो, 24 घंटे निर्जल कैसे रहेगा, उतने में तो जल भून करके खाक हो जाएगी अंतड़ी, नहीं कर सकता है। मानव सेवा संघ ने व्यक्तिगत भिन्नता के आधार पर आधारित, व्यक्तिगत रुचि योग्यता परिस्थिति बनावट के आधार पर जितने विभिन्न प्रकार के साधन हैं, उनका समर्थक और विरोधी नहीं है, समर्थन भी नहीं करता है, विरोध भी नहीं करता है। क्यों? क्योंकि यह तो व्यक्तिगत भिन्नता की बात है। जो करने वाला साधन है, जिसकी रुचि, जिसकी सामर्थ्य, जिसकी जैसी परिस्थिति हो अपना करो। हम हाँ भी नहीं करते, हम ना भी नहीं करते, लेकिन जो नहीं करना चाहिए वो किसी को नहीं करना होगा। तो बुराई नहीं करनी चाहिए तो बुराई सब किसी को छोड़ना पड़ेगा, और बुराई छोड़ करके फिर चाहे निर्जला एकादशी कर सको अथवा न कर सको, तुम्हें सिद्धि मिलेगी। बुराई छोड़ देने पर परिक्रमा दे सको अथवा न दे सको, तुम्हें सिद्धि मिलेगी। ऐसे सर्वमान्य सत्य का समर्थक मानव सेवा संघ है। तो बुराई रहित होने का मंत्र बताया स्वामी जी महाराज ने, रात्रि को सोते समय एक बार अपने संबंध में विचार कर लो, और अपनी दृष्टि से कोई भूल दिखाई देती हो तो उसको छोड़ने का व्रत ले लो, और उसको छोड़ने का निश्चय करने के बाद फिर अपने को कभी भी बुरा मत समझना। बुराई छोड़ने के बाद भी हम लोग भीतर भीतर अपने को बुरा समझते रहते हैं, और बड़े गौरव से स्वीकार करते रहते हैं कि मैं क्या बताऊं, मुझमें तो बड़ी दुर्बलताएं हैं। तो वर्तमान में कोई बुराई आप कर नहीं रहे हैं, भूतकाल की बुराई को स्वीकृति के द्वारा आप सजीव बना रहे हैं, ये भूल छोड़ दीजिए। तो बुराई रहित आप हो सकते हैं, और आपके अहम रूपी अणु में इतनी सामर्थ्य है, इतनी सामर्थ्य है कि एक बार आपने अपने को निर्दोष स्वीकार किया तो फिर उस दोष की उत्पत्ति आपके जीवन में नहीं होगी। अहम रूपी अणु में बड़ी सामर्थ्य है। अब आप देखिए ना, गोस्वामी तुलसीदास जी के जीवन की कथा है। गोस्वामी तो नहीं हुए थे उस समय, गृहस्थ थे, और पत्नी पीहर गई, और पत्नी की आसक्ति में पीछे से जल्दी ही पहुंच गए ससुराल, और वो महिला माता पिता से, सखी सहेलियों से मिलजुल रही थी। तुलसीदास जी के पहुंच जाने से उसको बड़ी खीज लगी कि अभी अभी तो मैं आई हूं इनके पास से, और ये भले आज भी तुरंत हमारे पीछे पीछे पहुंच गए यहां। तो उसने डांट दिया, कह दिया कि क्या इस हार मास के चांद के शरीर में आपको इतनी आसक्ति है कि आप दो चार दिन भी नहीं रह सके वहां निश्चिंतता से अकेले, अभी अभी मैं आई हूँ, सगे संबंधियों से मिलना भी नहीं हुआ और आप पहुंच गए, इतनी इतनी प्रीति आप परमात्मा में करते तो आपका उद्धार हो जाता। अब आप सोच करके देखिए, मुझको बड़ी सहानुभूति होती है उस महापुरुष के प्रति। बचपन में तो माँ बाप का प्यार नहीं मिला, दासी ने पाला, वो दासी भी 6 साल की उम्र में छोड़ करके मर गई, भटक भटक करके, बिलख बिलख करके बालक पाला गया। शादी होने पर अच्छी सुशीला प्रतिव्रता प्रेम करने वाली स्त्री मिली तो उसका सारा इमोशन, सारा संवेग उसी पर उमड़ पड़ा, अटैच हो गया। अब आप देखिए, इतनी गहरी आसक्ति, और एक बार उनको ठेस लगी और उन्होंने सोचा कि अच्छी बात, तुमने जो कहा है सोई करके रहूंगा। तो सारी आसक्ति एक झटके में उस महापुरुष ने तोड़ दिया कि नहीं तोड़ दिया? तुलसीदास जी के मुख से कभी भी ये रोना गाना किसी ने नहीं सुना कि क्या बताएं, स्त्री की ओर से मन हटाना चाहता हूं, हटता नहीं है। सुना नहीं किसी ने उनके जीवन में? कहीं नहीं है, हुआ ही नहीं। तो ये मैं बता रही हूं कि हमारे आपके अहम रूपी अणु में इतनी सामर्थ्य है, इतनी सामर्थ्य है कि जिस समय जिस विकार पर हम लोग विजय पाना चाहें पा सकते हैं, जिस बुराई का नाश करना चाहें कर सकते हैं। इसमें अनंत परमात्मा का, मंगलकारी प्रभु का मंगलकारी विधान बड़ा सहायक होता है। क्या हो गया, एक साधक थे, गुरु के पास जाते थे, गुरु महाराज ने उनको टोक दिया, चाय पीने के बड़े शौकीन थे, नुकसान करता होगा, कुछ बात होगी, गुरु ने कह दिया क्या भाई गंदा गंदा पानी पीते रहते हो, पहले दो चार बार और टोका होगा, छूटी नहीं थी आदत। वो साधक खुद ही कह रहे थे कि स्वामी जी महाराज उसके बाद चाय की ओर मुझसे देखा नहीं जाता है। तो ये भी बात है, बुराई को बुराई जानकर छोड़ने की चेष्टा करने पर आपके अहम रूपी अणु में इतनी सामर्थ्य है, शरीर दुर्बल हो सकता है, आप बेपढ़े लिखे हो सकते हैं, आप धनहीन हो सकते हैं, आपके कुटुंबियों ने विरोध करके आपको त्याग दिया हो, ऐसा हो सकता है, लेकिन शरीर के दुर्बल होने से, धन के कम होने से, साथियों के छोड़ देने से आपके अहम रूपी अणु की शक्ति नहीं घटती है। ऐसी असहाय अवस्था में भी एक पैसा भी साथ में नहीं, एक साथी भी साथ में नहीं, और शरीर भी रोगग्रस्त साथ नहीं दे रहा है, तब भी आप बुराई का त्याग करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, क्योंकि शरीर का बल घटता है बढ़ता है, अहम रूपी अणु में जो अविनाशी तत्व विद्यमान है उसके आधार पर उसकी शक्ति नहीं घटती है। तो असत्य को अस्वीकार करना हम चाहें तो कर सकते हैं, सत्य को स्वीकार करना हम चाहें तो कर सकते हैं, और बुराई रहित होने की आवश्यकता आप अनुभव कर रहे हैं, और आपको लगता है कि क्या बताऊं मुझसे छोड़ा नहीं जाता, तो सचमुच आप सिंसियरली ईमानदारी से बुराई रहित होना पसंद कर रहे हैं, तो आपकी सामर्थ्य से नहीं होगा, तो अनंत की अहेतु की कृपा से वो बुराई आपके जीवन में से चली जाएगी। ऐसा होता है, एक साधक की कथा सुनाई स्वामी जी ने, इन साधकों ने खुद ही बताया है स्वामी जी महाराज को, उनके गुरु ने कहा कि मांस खाना छोड़ दो, अच्छी बात, छोड़ दिया। बड़े ऑफिसर थे क्लास वन पोस्ट पर, वहां उसका एक श्रृंगार ये भी माना जाता है कि खूब खाया पिया जाए, क्लास वन पोस्ट का ये भी एक श्रृंगार है। तो 4-6 महीने छोड़े हुए हो गए थे, किसी दिन वो किसी मंडली के फेर में पड़ गए और मांस खा लिया। उसके बाद उनके ध्यान में आया कि गुरु महाराज ने तो मना किया था, तो वो सज्जन अकेले में बालक की तरह बिलख बिलख कर रोए दरवाजा बंद करके, हाय री जुबान तूने गुरु जी की बात नहीं मानने दिया, हाय री जुबान तूने गुरु जी की आज्ञा की अवहेलना करा दिया, रोए। उसके बाद फिर कभी उनको मांस खाने की रुचि ही नहीं हुई, रोकना पड़ा सो नहीं, रुचि ही जड़ से खत्म हो गई। तो दो बातें महाराज जी की, जो मानव जीवन का बड़ा भारी पुरुषार्थ है बुराई रहित होना, और उस बुराई रहित होने में दो ये बेसिक ट्रुथ जिसको कहना चाहिए, मौलिक सत्य ये है कि आपके अहम रूपी अणु में अपार शक्ति भरी पड़ी है, आप तय कर लेंगे कि इस बुराई को जीवन में नहीं रखना है तो वो नहीं रह सकती है, और फिर भी किसी समय आपको दुर्बलता मालूम होती हो और आप बुराई रहित होने के लिए व्याकुल हो जाएं, तो आपका जो परम हितैषी सर्व सामर्थ्यवान है वो आपकी बुराई को उसी समय मिटा देगा, फिर कभी आपको कोई प्रयास नहीं करना पड़ेगा। तो साधन का पहला कदम है बात क्या है, दूसरी बात यह है कि मानव सेवा संघ ने प्रत्येक व्यक्ति की बनावट के अनुसार उसकी व्यक्तिगत साधना में उसको सर्वथा स्वाधीन माना है। व्यक्ति को अपनी व्यक्तिगत साधना में पूरी स्वाधीनता से आगे बढ़ना चाहिए। व्यक्तिगत साधना क्या है? बुराई रहित होना तो सर्वमान्य सत्य है। और व्यक्तिगत रुचि क्या है? तो किसी को साकार उपासना में रुचि है, आकार में भी, किसी को राम रूप पसंद है, किसी को कृष्ण रूप पसंद है, किसी को शक्ति रूप पसंद है, किसी को निराकार पसंद है। तो मानव सेवा संघ ने कहा कि प्रत्येक भाई को, प्रत्येक बहन को अपनी व्यक्तिगत साधना में पूर्ण स्वाधीनता है। नाम लेना चाहते हैं कि जप करना चाहते हैं, कि ध्यान करना चाहते हैं, कि समाधि लगाना चाहते हैं, कि भजन करना चाहते हैं, कि कीर्तन करना चाहते हैं, कि नमाज पढ़ना चाहते हैं, कि गिरजाघर पसंद करते हैं, कि गुरुद्वारा आपको अच्छा लगता है। व्यक्तिगत साधना में हर भाई बहन को पूर्ण स्वाधीनता है। लेकिन जब व्यक्तिगत साधना में व्यक्ति स्वयं गहराई में उतरता नहीं है, व्यक्तिगत साधना के द्वारा अंदर के अंधकार को मिटाकर, नीरसता को मिटाकर, अपने ही में विद्यमान जो सत्य है उसकी अभिव्यक्ति के द्वारा अंतर में बल प्रकट होने लग जाए, अंतर में रस प्रकट होने लग जाए, तो ऐसा साधक अपनी साधना का प्रचार करने को कभी नहीं सोचता है। भीतर भीतर संतुष्टि आने लगती है, रस आने लगता है, तो किसी के पूछने पर भी वो सहज से बताना नहीं चाहता है, अरे कुछ नहीं, मैं तो ऐसे ही हूं। लेकिन व्यक्तिगत साधना के द्वारा आपने जीवन की सुंदरता को बढ़ाया नहीं, विश्व प्रेम की भावना जीवन में आई नहीं, प्राणी मात्र का हित आपके हृदय में बसा नहीं, ईश्वर की उपस्थिति का आभास आपके अंतर में मिला नहीं, तब क्या होता है? बाहर के विधि विधान के प्रति इतनी आसक्ति हो जाती है व्यक्ति की कि वो उसी का आग्रह लेकर जिसको तिसको जो पकड़ में आए उसी को समझाना चाहता है कि ये साधना बड़ी बढ़िया है। मानव सेवा संघ ने इस बात के लिए मना किया। महाराज जी ने क्या कहा? अपने मत, अपने विचार, अपनी सांप्रदायिकता, अपनी रुचि, अपनी बनावट के अनुसार तुम व्यक्तिगत साधना में स्वाधीनता पूर्वक आगे बढ़ो, अपनी साधना का अनुसरण खुद करो, परंतु दूसरों की साधना का विरोध मत करो, हंसी मत उड़ाओ, अपनी साधना के द्वारा अपने जीवन को ऊंचा उठाओ, लेकिन अपनी साधना को दूसरों पर आरोपित करने की चेष्टा मत करो। ये बताए, ये क्या है? यह मानव सेवा संघ की धार्मिक क्रांति है। आप सोच करके देख लीजिए, मानव समाज में युगों युगों से धार्मिक